हरे कृष्ण ब्याला भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण ब्याला भक्त वृंद की जय। हाँ तो रसिकानंद रसिनाकानंद प्रभु और सब मोहिनी माता जी का ये निवास स्थान आप सबको आज एकादशी के दिन हरि कथा में बुलाया है और एकादशी के दिन इस भजन का हमने श्रवण किया। अभी पहले तो भजन करने की जरूरत क्या है, क्यों भजन करेंगे इस दुनिया में, भजन क्यों करना चाहिए सुखी होने के लिए। इस दुनिया में सब लोग दुखी हैं, सुख होने का एक ही साधन है भजन का, भगवान का भजन करो। सारा दुखी संसार है, सुखी कौन है जो भगवान का भजन करता है। कैसे, अब थोड़ी देर पहले हम राकेश से बात कर रहे थे प्रभु जी गाड़ी में, सारा ही दुनिया का दुख रो रहे थे, ये भी परेशानी वो भी परेशानी। दुनिया में कोई भी बात, सुबह पेपर पढ़ा है, न्यूज़पेपर सुबह आता है ना, देखा है ना, उसमें क्या लिखा होता है, इधर इधर आदमी मर गया, इधर एक्सीडेंट हो गया, इधर बाढ़ आ गया, सब दुख की बात है, कोई सुख की बात होती है? दुख का बहुत होता है ना, रोज दुखी होता है ना। तो आप दुख वाले के पास जाओगे तो दुख मिलेगा और सुख वाले के पास जाओगे तो सुख मिलेगा। तो भगवान कैसा है, आनंदमय, भगवान सुखमय है, आनंदमय है, उसके पास जाओगे तो सुख मिलेगा। दुनिया कैसी है, दुखालयम, दुनिया दुखालयम है, भगवान सुखालयम है। तो सुख वाले के पास जाओगे तो सुख मिलेगा, दुख वाले के पास जाओगे तो दुख मिलेगा। तो संसार में क्या मिलता है सबको, सुख के नाम में दुख मिलता है, कहते हैं सुख देंगे मिलता दुख है। संसार में सबको दुख मिलता है और जिसको ये समझ में जा जाए कि संसार में दुख है वही भजन करेगा। और जो समझेगा नहीं नहीं मैं थोड़े दिनों के बाद सुखी हो जाऊंगा संसार में, सब लोग ऐसे समझेंगे, सब लोग ऐसे कर रहे हैं, नहीं थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो सुखी हो जाएंगे, बस अभी सुखी होने वाले हैं। प्यासा हिरण, क्या बोलते हैं हिरण को बंगला में, हरिन, और प्यासा जल न मिले, तृष्णा मृग तृष्णा, उसको बोलते ही मृग तृष्णा है, ऋण तृष्णा। वो रेती में दिन में देखता है कि सामने पानी है, भागता है उसको पीने के लिए, उधर पहुंचता है पानी उतना ही दूर होता है। अच्छा हम इस दुनिया में समझते एक पड़ा है सुख, बस अभी मिलने वाला है, उधर जाएंगे तो सुख उतना ही दूर होगा। प्रभुपाद जी के उदाहरण देते थे, पहले लोग गधे को घोड़े को भगाने के लिए पता है क्या करते थे, गधे के ऊपर जो चढ़ता था ना घोड़े के ऊपर, एक लकड़ी लेता था, लकड़ी के अंदर आगे गाजर बांध देता था, गधे के आंख के सामने गाजर ऐसे होता था, अभी खाटा है अभी खाया, ए दौड़ेगा तेज दौड़ेगा, लेकिन लकड़ी में गाजर उतना ही दूर रहेगा, खा नहीं पाएगा और दौड़ता जाएगा। ऐसे हम भी, हमारे सुख का गाजर आगे लटका रहा है लेकिन हाथ नहीं आ रहा है, नहीं ये बात समझ में आ रही है। तो असल में इस दुनिया में जिसने ये समझ लिया कि ये दुख का जगह है, संसार दाबानल, दाबानल है, दाबानल है का मतलब वन का आग है, वन का आग फायर ब्रिगेड नहीं बुझा सकती, जब वन में आग लग जाती है वो ये संसार में आग लगी हुई है, सब लोग जल मर रहे हैं लेकिन फिर समझते नहीं हम थोड़ा सा बस सुखी हो जाएंगे थोड़े दिनों के बाद। इस आशा में कई जन्मों से हम भटक रहे हैं दुनिया में, हम सुखी हो जाएंगे इस आशा में कई जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन क्या रास्ता है। सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने आप कोई भी जीव सुखी नहीं हो सकता है, भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, स्वतः स्वतः कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती, अपने आप नहीं हो सकती। इसलिए भगवान ने कृपा कर शास्त्र दिया, साधु दिया, शास्त्र साधु कृपा करके भगवान ने दिया है संसार में। तो ये साधु भक्ति विनोद ठाकुर साधु है और ये हमको बता रहे हैं कि संसार में जो दुखी लोग हैं उसको सुखी कैसे होना चाहिए। सुखी होने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा, भजन करने का मतलब भगवान के पास बैठना, भगवान की भजन करने का मतलब क्या होता है, भगवान के पास बैठना, पूजा बोलते ना, उपासना बोलते ना, तो पूजा कैसे करोगे, भगवान के पास बैठोगे तब करोगे ना, भगवान को अगरबत्ती दिखानी है तो भगवान के पास जाके दिखाओगे ना, तो दीप दिखाना है तो पास जाओगे, प्रसाद तो पास जाओगे, तो भगवान के नजदीक जाओगे ना, तो अगर सर्दी बहुत लग रही है और आग जल रही है, आग के पास जाओगे तो सर्दी खत्म हो जाएगी ना। अग्नि जल रही है और ठंडी लग रही है तो अग्नि के पास जाओगे तो ठंडी खत्म हो जाएगी। अच्छा, दुख में है लेकिन भगवान के पास जाएंगे सुखी हो जाएंगे। बहुत आसान सा है, भगवान के निकट जाने से सुखी हो जाएंगे। कुर्सी एक दे दो राकेश जी, यहाँ इस कोने में कुर्सी रख लीजिए। यहाँ कुर्सी अगर गीली नहीं है तो देखो, नहीं यहाँ इन दोनों के बीच में यहाँ आसन लगाइए। कुर्सी चाहिए रखो, ना पेंट आसन नहीं है। हरे कृष्णा, कुर्सी साफ करके यहाँ रख दो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। चला एक मिनट हाथ जोड़ के मेरे पीछे आप जरा बोलिए, तो जो पहले बोलना था बाद में बोलते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ भी जोड़ लीजिए और मन को एकाग्र करके जरा मेरे पीछे आप उच्चारण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण, कैसे लगा अभी आपको?
हम लोग दोनों के चिंतन है, ऐसे टाइम है सबको। हम लोग तो स्टार प्लस से उन्वाल है, दोनों से मैन आत्मा थी थे, तो আমরা সকালবেলা তাই দেখতে পাই। তো আমাদের কাছে উনি বলেছেন, তো আমাদের এখানে আগে এসেছেন, আগে এখানে বড় প্রোগ্রাম হয়েছে, তো আজকে আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমরা উনিকে আবার পেয়েছি এবং একাদশী তিথিতে পেয়েছি। সবাই মিলে ওনাকে অভ্যর্থনা করবো তিন মাস ধরে বলে।
স্বামী, আপনি ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলা, आपको कैसे लगा?
अच्छा लगा।
अच्छा है, खुशबू सुंगो थोड़ी देर, भगवान की माला का पुष्प है सुंदर सुंगने के लिए। बोलो बेटा कैसे लगा, क्या लगा, क्या मिला, क्या अनुभव बताओ अपना। बंगाली में पूछो कि आपको ऐसे बोलने से एक मिनट में क्या महसूस हुआ, पूछो।
अंदर में शांति मिलती है,
अंदर में शांति मिलती है। क्या नाम प्रभु जी का? अच्युत कृष्णदास बोलते, हमने ऐसे बोला उन्होंने हुआ कि अंतर में शांति मिलती है। आपका नाम क्या है?
सुप्रिया दास।
आपको क्या लगा? अच्छा क्या, अच्छा क्या, बोलो 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 नहीं।
उसी टाइम जो बोल रहे थे, उस टाइम जो कृष्ण अवस्था में, कृष्ण
भावना का उदय हुआ, फीलिंग हुआ, ओके, शांति मिला। और कोई बोले आपको माता जी? लो बाहर की कोई बात अंदर नहीं आ रही है और अंदर में शांति मिल रही है। और कोई? भगवान के चरणों का दर्शन होता है, आनंद मिल रहा है। हाँ, और बाहर का दुख कष्ट भूल गया, अंदर में आनंद और सुख मिला। तो एक मिनट में ये हो गया। और सारा दिन लोग काम काय के लिए करने जाते हैं, सुखी होने के लिए। बाहर से कोई चीज लीज लाएंगे, बोलेंगे सुखी हो जाएंगे, लेकिन सुखी बाहर नहीं है, सुख तो अंदर में पड़ा है। अभी एक मिनट में हमको मिल गया, शांति अंदर में पड़ी है। हमको मिल गई कि नहीं मिल गई? अभी तो शांति भी अंदर पड़ी है, सुख भी अंदर पड़ा है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। दुनिया क्यों सुखी नहीं हो रही है? क्योंकि सुखी सुख बाहर ढूंढ रहे हैं, जबकि सुख अंदर है। वो समझते हैं पैसा सुखी कर देगा, समझते हैं जगह मकान सुखी कर देगा, लेकिन सुख उसमें नहीं है, सुख तो अंदर में है। अंतरारामो, अंदर, अंदर में सुख है। आराम, राम रमण का मतलब सुख अंदर में है, बाहर नहीं है। अंत सुख सुख अंदर में बाहर नहीं, हम बाहर सुख को ढूंढते हैं, ये हमारी परेशानी है। इसलिए बाहर क्या है? दुख। बाहर दुख है, अंदर सुख है, और हम बाहर ही ढूंढ रहे हैं। तो सुख प्राप्त करना है तो क्या रास्ता है उसका? भगवान के निकट जाना है, क्योंकि भगवान सुखमय है। दुनिया दुखमय है, भगवान सुखमय है, ये एक बात समझ लीजिए, ठीक है? दुनिया दुखमय है, भगवान सुखमय है। जिसको सुख चाहिए उसको भगवान के पास जाना पड़ेगा। सुख जिसको चाहिए उसको क्या करना पड़ेगा? और भगवान के पास जाने के लिए अपने आप नहीं जाएगा जीव, इसलिए साधु और शास्त्र की जरूरत है। और ये दोनों भगवान ने कृपा करके संसार में दिया है, साधु भी दिया है, शास्त्र भी दिया है। शास्त्र भी भगवान ने दिया और साधु भी दिया। साधु क्यों दिया? शुद्ध भक्त चरण रेणु। साधु क्यों दिया भगवान ने? कि उसके चरण रेणु, उसके पीछे चले। चरण, उसके चरणों से धूल साधु के कैसे उड़ती है? जब चलेगा तो पीछे धूल उड़ेगी, तो धूल हमको मिलेगी। धूल मिलेगी मतलब वो जिस रास्ते से जाता है उसके पीछे हमको जाना चाहिए। हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं? दुनिया के रास्ते पे। साधु के पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा? शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। अनुकूल भगवान के पास जाने के लिए, सुखी होने के लिए साधु के पीछे जाना पड़ेगा। तो दूसरा इसका अर्थ क्या हुआ? दुखी होने के लिए दुनिया के पीछे जाना पड़ेगा। साधु के पीछे लोग नहीं जा रहे हैं, दुनिया के पीछे जा रहे हैं, तो दुखी हो रहे हैं। साधु भगवान ने दिया, साधु शास्त्र दोनों दिए। क्यों दिए? कि हम उसके पीछे चले, शास्त्र के अनुसार जीवन जिए और साधु से शिक्षा ग्रहण करें, उसके पीछे चले, उसकी आज्ञा का पालन करें। यह काहे के लिए? भजन के लिए। अनुकूल है और प्रतिकूल क्या है? उल्टा क्या है? संसार के पीछे चलना। और फिर है दूसरा लाइन है, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेमलतिकार मूला। प्रेमलति का कौन सी है? भक्ति लता बीज। भक्ति लता बीज नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र बहुत बहुत गहरी चीज है ये। भक्ति लता बीज कौन देता है? गुरु देता। मंत्र भी नहीं है, गुरु मंत्र भक्ति लता बीज नहीं है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण कृपा, कृष्ण प्रसाद, गुरु प्राप्ति, गुरु शिक्षा, गुरु चरण रेणु, भक्ति प्राप्ति, दोनों चाहिए। शुद्ध और भक्त सेवा परम सिद्धि। भगत की सेवा का अर्थ क्या है? उसके पांव दबाना, कपड़े धोना। भगत सेवा मीन्स उसका अर्थ है भगत की शिक्षाओं को जीवन में उतारना। प्रभुपाद की अच्छी से अच्छी सेवा क्या है? 16 माला जपना, 4 नियम पालन करना, ये सबसे अच्छी सेवा है साधु की। संत की सेवा हर नाम ध्याये। साधु की सेवा क्या होती है? भगवान का नाम जपो। सबसे अच्छा क्या लगता है संत को? कोई भगवान का नाम लेता है। तो भगत सेवा क्या है? भजन। उससे मिलेगा क्या? परम सिद्धि। परम सिद्धि, एक संसार में सिद्धि मिलती है, एक परम सिद्धि का मतलब परम को प्राप्त करने की सिद्धि। एक होती है संसार की सिद्धि, पैसा कमाने की सिद्धि, एक होती है परम को प्राप्त करने की सिद्धि, एक परम सिद्धि। एक तो रिद्धि सिद्धि होती है, संसार में सिद्धियां लोगों को चाहिए, ये परम सिद्धि है, सिद्धि नहीं है। परम के परम सिद्धि का मतलब भगवत प्राप्ति, परम सिद्धि। वो परम सिद्धि क्या है? भक्ति लतिकार मूल। तो गुरु कृपा करके क्या देता है? भक्ति की लता का बीज देता है, बीज देता है। आपको जाके बीज लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाओगे? हृदय में। हाँ, कहाँ लगाना है? हृदय में लगाना है बीज, हृदय में आरोपण करना है। वो बीज क्या है? भक्ति की लता का। भक्ति की लता का बीज क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को प्रयागराज में 10 दिन ये बात समझाई। भक्ति की लता का बीज श्री प्रभुपाद लिखते हैं, साधन भक्ति का रास्ता, मेथड्स रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर ट्रेनिंग डिवोटी टुवर्ड्स परफेक्शन इज कॉल्ड भक्ति लता बीज। जो प्रभुपाद ने पोपट में लिखा, ये दिस इज द लैंग्वेज। भक्ति की लता का बीज है साधन भक्ति। साधन भक्ति भक्ति की लता का बीज है। गुरु क्या देता है हमको? कि चार नियम का पालन करना, सुबह उठना, शास्त्र पढ़ना, नाम स्मरण करना, ये क्या है? नियम है, नियम है। ये भक्ति की लता का बीज है। इसी तरह चैतन्य मध्य लीला 19वां चैप्टर उसके कोई 150-155 श्लोक में के पर्पट में ये लिखा हुआ मिलेगा। तो लता का बीज तो मिल गया, बीज हमको गुरु ने दे दिया, बाजार से बीज लाए, फिर जमीन भी अच्छी बनानी पड़ेगी ना। बीज आरोपण आपको करना है और फिर माली बनना है, माली होइए, श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे, श्रवण कीर्तन आदि जले सिंचन करे। ये कहां से मिलेगा श्रवण कीर्तन? साधु संग, भगत सेवा, कथा श्रवण, भक्त चरण रेणु, हरि कीर्तन, इसका अर्थ है। श्रवण कीर्तन जले सिंचन करे, सिंचन करे भक्ति की लता, फिर भक्ति की लता बढ़ेगी। तो उसका मूल क्या है? इसका मतलब बीज क्या है? कौन देगा? भगत सेवा, भगत सेवा। गुरु भगत होता है, भगत सेवा। भगत सेवा का अर्थ भगवान भगत की शिक्षा को जीवन में धारण करना। भगत सेवा मीन्स गुरु की सेवा दो प्रकार की होती है, वाणी की और वपु की। वाणी की सेवा मुख्य होती है, वपु की नहीं। वपु का मतलब गुरु जब साक्षात है तो उसकी सेवा किया, रोट भोजन खिला दिया, कपड़े धो लिए, नहीं। वाणी की सेवा मुख्य है, जो कहा वो करना। तो वाणी सेवा मुख्य होती है। तो भक्त की सेवा भक्ति की लता का मूल है, वही बीज है। उसकी आज्ञा जो उसने शिक्षा दी उसी को धारण करना है। और शिक्षा में विशेष रूप से सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए चैतन्य महाप्रभु 64 साधन बताते हैं, 64 साधन बताते हैं भक्ति के। और फिर कहते हैं इनमें से 5 मुख्य है कृष्ण प्रेम देने के लिए, 5 मुख्य है। और आप लोग सब ग्रस्त हैं इसको छोड़ के, और इसको ऐसे ही रहने दो, आप लोग सब ग्रस्त हो। और आप शास्त्रों में देखेंगे प्रायः ग्रस्त के लिए बहुत बड़ा उंगली उठा के बोला हुआ है, ये तो ग्रह कूप, अंधकूप है, ऐसे लिखा है, अंधकूप है, अंधा कुआं है, इसके अंदर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवद गीता के 13वें अध्याय में ग्रस्त के लिए जब ऐसे लिखा है ज्ञान में, तब लिखा है अगर ग्रस्त के घर में ये 4 चीजें हैं तो उसका घर वैकुंठ है, तो ग्रह कूप नहीं है। क्या 4 चीजें बोले हैं? पहली चीज, घर में ठाकुर जी का मंदिर होना चाहिए। पहले घर में भगवान श्री राधा कृष्ण गौर निताय सीताराम लक्ष्मण जो भी ठाकुर जी का घर में मंदिर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, रोज भगवान को प्रसाद भोग लगना चाहिए, वो प्रसाद पाना चाहिए, दूसरी चीज। तीसरी चीज, रोज भगवान के नाम का कीर्तन घर में होना चाहिए। चौथी चीज, भगवत गीता भागवत का रोज पठन पाठन करना चाहिए। जिस घर में ये 4 चीजें होती है वो ग्रस्त सुखी है, वो घर अंधकूप नहीं है, वो घर वैकुंठ है। ये 4 चीजें भगवत गीता के 13वें अध्याय के जहां 9-10-11-12 श्लोक है ज्ञान का वर्णन है, वहां ये गृहस्थी के लिए, जहां सब जगह ग्रस्त में लिखा है कि बहुत कष्ट होता है लेकिन उसमें सुखी होने का साधन ये 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में वो भक्ति के 5 चीजों में से 4 मुख्य चीजें आ गई। लेकिन सबसे मुख्य चीज क्या है भक्ति के लिए? भक्त संग। एक ही मुख्य चीज अगर कोई चाहिए भगवान की भक्ति के लिए एक, तो केवल भक्त संग। क्योंकि भक्ति का जन्म भक्त के संग से होता है, भक्ति मिलती ही भक्त से है। भगवान नहीं देता भक्ति, भगवान भक्ति नहीं देते, भगवान भक्ति सबको देते ना, नहीं तो भगवान को लोग कहेंगे किसी को देता है किसी को नहीं देता है। इसलिए भगवान ने भक्ति देने का काम अपने पास रखा ही नहीं, भक्त को दे दिया। भक्ति जन्म है ते भक्त संगे, महाप्रभु का ये शिक्षा है। तो मुख्य चीज संसार में महापुरुष किसी ने बोला दुनिया में सबसे अच्छा क्या है, ये दुनिया में सबसे अच्छा क्या है, बोला भक्त का संग। सो दुर्लभ क्या है इस दुनिया में, भक्त का संग। भक्त के संग में भगवान की कथा मिलेगी, भक्त के संग में भगवान का कीर्तन मिलेगा, तो आपके बीज का दोनों जल मिलेगा सिंचन करने के लिए। भक्त के संग में भगवान का कथा कीर्तन भक्त के संग में ही मिलता है, और कोई रास्ता नहीं। और फिर आगे देखिए भक्त के संग की महिमा लिखी है भक्ति विनोद ठाकुर में, तो दो लाइन में क्या है कि हमको सुखी होना है तो भक्त का संग करना चाहिए, और नहीं तो जो को संग हम कर रहे हैं वो केवल हमको दुखी करेगा। और भक्त की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो हमारी भक्ति के बीज लता वो आगे बढ़ेगी। माधव तिथि भक्ति जननी जतन पालन कोरी। माधव तिथि एकादशी को बोलते हैं, माधव तिथि कौन सी है, एकादशी, ये माधव तिथि है। माधव तिथि भक्ति जननी, ये भक्त की भक्ति को जन्म देती है। जतन करी पालन करी, जतन करी जतन होता है मतलब अभी 15 दिन में एक बार एकादशी आता है तो पता करना चाहिए कब एकादशी है। ओ कल गई मेरे को पता ही नहीं लगा, तो जतन करो पालन करी। महाप्रभु कितना सावधान था इस बात में, चेतन महाप्रभु छोटे से बालक है, अपनी माँ सची माता को कहते हैं माँ एक 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 हमारा इच्छा पूरी करो। माँ बोलती आपका इच्छा सब पूरी करेगा, कौन सी इच्छा, तो महाप्रभु कहते हैं माता एकादशी के दिन अन्न न खाओ। महाप्रभु अपनी माँ को सच्ची माता को कहते हैं जतन करिए एकादशी पालन करो। अपनी माँ को अगर महाप्रभु कह रहे हैं तो हम सबके लिए, वो अपने सबसे प्रिय है उसको कहेगा ना। कोई अच्छा कोई अच्छी चीज किसी को देनी होती है किसको दोगे आप, अपने प्रिय हो किसी को, माता पिता को दोगे बेटे को दोगे उसको दोगे ना। तो महाप्रभु सबसे अच्छी चीज अगर माँ को शिक्षा दिए तो बोला एकादशी का पालन करो। माधव तिथि भक्ति जननी जतन करी पालन करो, जतने पालन करी, जतने पालन करी का मतलब बहुत सावधान होकर एकादशी का पालन किया करो। कैसे सावधान होकर एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए, पहले तो रात को संकल्प करना चाहिए कि कल मेरी एकादशी का मुझे पालन करना है। संकल्प करते हैं पहले, नेम ये है कल मैं एकादशी का पालन व्रत का पालन करूंगा, सुबह उठ के भगवान का दर्शन करूंगा। व्रत का पालन करना तो अन्न नहीं खाना है लेकिन कम खाना है, कम पकाना है, ज्यादा समय भगवान के भजन में लगाना है। इसका नाम था एकादशी फास्टिंग, हमने बना दिया फीस्टिंग। नाम था एकादशी फास्टिंग, मतलब कुछ खाना नहीं है और हम इतना खाना बनाते हैं एकादशी का, इतना वैरायटी बनाते हैं कि भगवान की भक्ति भूल जाती है और आंखों में नींद आने लगती है। जतन इसलिए बोला है कि पालन करो, लेकिन जतन इसलिए करोगे ज्यादा कुछ खा नहीं लेना है कि नींद आ जाए और भगवान का, और रात को सारी रात भगवान के भजन में जागते हैं एकादशी के दिन। कम से कम 12 बजे तक जागना चाहिए, कम से कम 12 बजे तक जाग के भगवान का भजन करना चाहिए, कथा कीर्तन करना चाहिए एकादशी के दिन। तो मौका मिलता है तो रात को बैठ कर करना चाहिए, शास्त्र पढ़ना चाहिए, 5-7 लोग बैठ के कीर्तन करना चाहिए, भगवान का आराधना करना। जतन करे पालन का मतलब ये जैसे रोज करते ऐसे नहीं करना, एकादशी का दिन भगवान की तिथि है, हरिवासरे बोलते हैं हरिवासरे, और माधव तिथि भक्ति जननी जतन करे पालन। फिर कृष्ण बस्ती बस्ती बोली परमादरे बोरी, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला किया है उन सब स्थानों के लिए हमारे दिल में आदर होना चाहिए। कृष्ण बसु थी, जहां जहां कृष्ण बैठे हैं, जहां जहां उनकी लीला हुई है, जैसे पूरा ब्रज मंडल है, आदर करने का मतलब उसका सम्मान करके वहां जाके वही। अच्छा, आप यहां से बंबई जाओगे तो क्या क्या देखोगे? बंबई से लौट के आओगे तो क्या आपके मन में होगा? बंबई घूम के आओगे तो मन में क्या आएगा? गाड़ी है, ट्रैफिक जाम था, उधर ट्रेन के ऊपर इतना भीड़ था, यहां आओगे वो बड़ी बिल्डिंग थी, यही देख के आओगे ना, तो आप क्या लाओगे वहां से? वहां की परेशानी। और वृंदावन से वापस आओगे तो क्या बोलेंगे? राधे 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 राधे, वो इधर भगवान ना, भगवान गोवर्धन देखा, गोवर्धन परिक्रमा किया। तो वहां से आओगे तो भगवान की याद लाओगे, और बॉम्बे से आओगे तो भोग की याद लाओगे। बॉम्बे में 100% भोग है और वृंदावन में 100% योग है भगवान की भक्ति का। तो जहां जाओगे वही चीज वहां से लाओगे। लोग घूमने जाते हैं, भाई वो हम जा रहे हैं थाईलैंड जाएंगे कि मलेशिया जाएंगे, तो वहां से भोग ले आएंगे केवल। भोग ही तो करने जा रहे हैं। और हमको कहां जाना चाहिए? यहां भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आपको जाना जरूर चाहिए, लेकिन उस जगह पे जाना चाहिए जहां भगवान श्री कृष्ण की याद आए। बंबई में कृष्ण की याद आएगी?
नहीं
आएगी। वृंदावन में आएगी कि नहीं आएगी? अपने आप आ जाएगी। तो कृष्ण बसती बसती बोले, जितना आदर है उसका आदर करना चाहिए। हा? और फिर कृष्ण की बात किया वृंदावन की, आप नहीं जा पाओगे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा पता नहीं सब लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। गौर अमार, कृष्ण के लिए आदर लिखा है और गौर को अमार लिखा है भक्ति विनोद ठाकुर ने। अमार का मतलब माय डियर फ्रेंड जैसे लिखते हैं ना, तो माय डियर गौर अमार, गौर हमारा है। कृष्ण किसका है? राधा का है। कृष्ण हमारा नहीं है, कृष्ण राधा का है, गौर हमारा है। ये समझ में आ रही है बात? वहां आदर करना है। आदर नहीं करेंगे तो राधा रानी से पूछेंगे तब अंदर जाएंगे, वो मालिक है उधर ही, वृंदावन ईश्वरी राधे है। लेकिन यहां गौरंग गौर हमारा, सीधे जाके मिल सकते। गौर हमारा जे सब स्थाने कोरिलो ब्रह्मण रंगे, ब्रह्मण रंगे, रंगे का मतलब भगवान के भक्ति में मस्त होके जहां घूमे हैं। तो भगवान वो भ्रमण करते थे, और रंगे, रंगे का मतलब भगवत, भगवत के, भगवान के प्रेम में। गोपी भागवत श्री कृष्ण रंग प्रति अक्षर प्रति श्लोके गोपी कृष्ण नाना रंग, रंग मीन्स कृष्ण प्रेम। तो जहां जहां गौरंग महाप्रभु ने भ्रमण किया है प्रेम में, से सब स्थाने, से सब स्थाने, वो सब जगहें, से सब स्थाना हेरी बो आमी, मैं फुन जो जगहों पे जाके घूमूंगा, ऐसी जगह घूमेगा नहीं, प्रणय भक्त संगे, प्रेमी भक्त के संग में जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। अकेले जाओगे तो क्या दिखाई देगा? आप अकेले जाओ वृंदावन में क्या दिखाई देगा? नहीं, बंदबाश बंदर पहले दिखाई देगा, ऐसे आपको देखेगा पहले, और आपको पता भी नहीं लगेगा, आपका चश्मा उतार के ले जाएगा, फिर आपके जेब के अंदर से हाथ निकाल के जो होगा वो निकाल के ले जाएगा। तो वृंदावन अकेले जाओगे तो पहला तो अंदर जाने से पहले पंडा मिलेगा बदमाश, बोलेगा इस मंदिर में चलो ये चढ़ाना है, उससे बच गए तो बदमाश बंदर मिलेगा आपका कुछ छीन के जाएगा, उससे बच गए तो मोटा मोटा सुअर घूमता हुआ मिलेगा और ऐसे गटर के पास आपको जाके पूछ से गंदा मार जाएगा, कचरा फेंकेगा, बस और कुछ नहीं दिखेगा वृंदावन। यही चार चीजें हैं, गटर, गटर का मतलब सीवेज, गंदा नाला, हाँ क्या बोलते हैं, ड्रेन, गंदा नाला, मोटा सुअर, बदमाश बंदर और पंडा, बस चार चीजें दिखेगी। कृष्णा नहीं दिखेगा वृंदावन में, अगर अकेले गए तो कुछ नहीं दिखेगा, यही दिखेगा। भक्त के संग दावे, कौन से भक्त? प्रणयी भक्त संगे। प्रणयी भक्त कौन होते हैं? प्रणय किसको बोलते हैं? राधा, हाँ कृष्ण है राधार प्रणय विकार, प्रणय विकार, प्रणय प्रेम की वो स्थान है जिसमें आदमी अपने आप को भूल जाता है, जिससे प्रेम करता है उसी के भाव में जीता है, प्रणय का वो अर्थ है। कृष्ण यानी राधा है कृष्णेर प्रणय विकार, राधा क्या है कृष्ण के प्रेम से प्रकट हुई है, कृष्ण अपने आप को भूल के राधा के भाव में आ गए, ये चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण अपने आप को भूल के राधा के भाव में आ गए। तो प्रणय भक्त कौन सा होता है, जो जहां रहता है वहां का ही भय बन के रहता है, उसको और दुनिया का पता नहीं होता है। प्रणय भक्त का मतलब जो वृंद में जाएगा, प्रणय भक्त कौन थे, ये रूप हमारे गोस्वामी थे, ये गोस्वामी थे, ये भक्त प्रणय में प्रेम में वहां की सब चीजें हमारे लिए निकाल के रख दी, ये प्रणय भक्त थे। जब वहां गए थे यहां से कोई भक्त तो जीव गोस्वामी आ रही तो उसको भक्तों के संग में भेजा जाता है, जाके ब्रजमंडल देख के आओ। जगन्नाथ जब गए थे वृंदावन, महाप्रभु ने कहा सनातन गोस्वामी के साथ रहना, अकेले मत जाना। जगन्नाथ पंडित सत्यभामा के भाव में भगवान की शक्ति है, लेकिन वहां जब वृंदावन कहेगा तो सनातन गोस्वामी के साथ रहना, कहीं अकेले मत जाना, नहीं तो आप धाम में अपराध ज्यादा करोगे और लाभ कम लोगे। तो जाएंगे गौरंगा महाप्रभु की जहां लीला हुई है वहां, किस किस के साथ जाएंगे, प्रणयी भक्त संगे, प्रेमी भक्तों के संग। कौन से प्रेम, जो गौरा के रंग में इतना मगन है कि उसको दुनिया का पता ही नहीं है, जब बोलेगा केवल भगवान की कथा ही बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, उसके संग में जाएंगे। बहुत से लोग घूमने जाते हैं लेकिन पिकनिक करने जाते हैं, वो भक्ति के लिए नहीं जाते, घूमने जाते। कहां चला गया हमारा भजन, गुम हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद क्या है, गौरा अमारा कृष्ण आदर, कौन सा पेज था, मालूम आप पढ़िए, कोई लाइन पढ़िए, हाँ ये हो गया,
केशव स्थान हरि वो आमी
भक्त संघ है, ये तो हो गया।
सुनित मन अवसर सदा।
अब हमारी पहचान क्या है, सुख कहाँ मिलेगा, जहाँ कीर्तन होता है। कीर्तन का पता कैसे लगा, मृदंग बजता है, हमारे पास मृदंग नहीं बज रहा था, मृदंग वाद्य सुनिते, कहीं से मृदंग का बाद आवाज सुनने में आएगा, मन अवसर सदा याचे, तुम कहता है वहां जाओ जहां कीर्तन हो रहा है। हमारा मन कीर्तन का आवाज सुन के बड़ा आनंद में फुलित हो जाता है, अभी भगवान का कीर्तन हमको सुनने और करने का अवसर मिलेगा। मृदंग तो ये भाव क्या है, इसमें गोपियों को क्या सबसे अच्छा लगता था, ब्रज में भगवान की बांसुरी बजती थी, बांसुरी की ध्वनि सुन जाती थी, दुनिया सारी भूल जाती थी, आनंद में मगन हो जाती थी। और गौर लीला में जहां मृदंग बजता है वो बांसुरी की तरह सब भक्तों को अपने ओर आकर्षित करता है। कृष्ण लीला में जैसे बांसुरी मुख्य थी, ऐसे गौर लीला में मृदंग मुख्य है। मृदंग का आवाज आया इसका मतलब हरि कीर्तन होगा, इसका मतलब जहां कीर्तन होता है वहां गौरंगा महाप्रभु का सुमरण होता है। कीर्तन का दाता गौरंगा महाप्रभु है, जो कीर्तन हम कर रहे हैं ये गौरंगा महाप्रभु ने हमको दिया है। और जहां कीर्तन होता है वहां महाप्रभु, कहां महाप्रभु कौन से कीर्तन में आते थे, नित्यानंद कीर्तन, सदा महाप्रभु चार स्थानों में रहते हैं। सचिर रंधन, सची माता जहां रंधन करती है वहां महाप्रभु नित्य आते हैं। नित्यानंद कीर्तन, श्रीवास आंगन और राघवेंद्र झालन, राघवेंद्र जो पानीहट्टी पे राघवेंद्र का घर है, और दमयंती जो बनाती थी 12 महीने के लिए चीजें और छोटे छोटे झोले वो ले जाते थे 12 महीने महाप्रभु के लिए, इन चार स्थानों पे महाप्रभु से नित्य निवास करते।
राघव भवन
है वो भवन में जो स्पेशल चीज उसकी वो बनाती थी, उसके लिए शब्द ऐसे है। तो बोंगल ये आप करेक्ट करो, हमको बोंगल है हमारे को बोलने में गड़बड़। राघव भवन, श्रीवास आंगन, राघवेर भवन। तो अभी का आप लोग कितने गए हैं वहां देखने, सब लोग गए होंगे, नहीं पानी हटी सब लोग गए, पानी हटी नहीं गए,
तो गए
भवन पास में थोड़े जाएंगे, राघवेर भवन है
में गए थे, वहां हमारे
पांच मिनट का रास्ता भी नहीं है, पैदल जाना है राघवेर भवन में। तो वही प्रणय भक्त संगे नहीं जाएंगे तो बहुत ही चीजें नहीं दिखेंगी। नित्यानंद का घर वही है, नित्यानंद बॉडी है, नित्यानंद वाड़ी है वहाँ श्रीवास आंगन सचिर रंधन। तो यहाँ मृदंग जहाँ बाजता है हमको मालूम होना चाहिए कि महाप्रभु का कीर्तन हो रहा है, तो हमारे दिल को खुश होना चाहिए, बहुत आनंद होना चाहिए। मृदंग बाजे सुनिते मन अवसर सदा याचे। और फिर उस मृदंग तो बजता है लेकिन उधर लोग नाच रहे हैं तो नहीं चाहिए हमको। क्या चाहिए उधर? गौर विहित कीर्तन सुनिए। गौर विहित, एक होता है निहित एक होता है विहित। विहित का मतलब जो गौरंगा महाप्रभु ने बताया है वो कीर्तन, उस मार्ग से कीर्तन, अपनी मन से कीर्तन नहीं। गौर विहित कीर्तन, बहुत सावधान शब्द लिखा है। जैसे एक होता है वेद का बताया हुआ रास्ता, वेद विहित और वेद निहित होता है, मना किया हुआ। तो कौन सा कीर्तन? गौरंगा महाप्रभु ने हमारे को विहित कीर्तन। नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन का आरंभ किया, विशेष हम जो कीर्तन करते हैं या हरे कृष्ण कीर्तन। महाप्रभु विशेष क्या गाते थे? विशेष का जब साल दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे, कृष्ण 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 है राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव भाई मां। ये कभी ये कीर्तन करते थे, हरि हरि बोल तो बोलते ही थे, हरे कृष्ण कीर्तन करते। तो गौरव विहित कीर्तन, इसलिए प्रभुपाद जी कभी कोई कीर्तन में थोड़ी सी गलती करते थे तो ऊपर से आदमी भेजते थे, बोलो उसको बोलो कीर्तन ठीक करो। अपने मन से कीर्तन का कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। गौरव विहित कीर्तन, प्रभुपाद जी का एक प्रवचन है, बोलते हैं बहुत से लोग कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, बड़ा सुंदर कीर्तन नृत्य करते हैं, और कीर्तन पूरा करने के बोलते हैं गला सूख गया है बीड़ी चाहिए बीड़ी। गला सूखा बीड़ी चाहिए, तो ये गौर विहित कीर्तन नहीं है। आई हैव सीन, मैंने देखा है, प्रभुपाद ने तो बंगाल में बहुत कीर्तन देखा। चाय कीर्तन पूरा हो गया, चाय लाओ चाय लाओ चाय लाओ बीड़ी लाओ बीड़ी लाओ, तो ये कीर्तन वाले बहुत मिलेंगे चाय बीड़ी लाओ। ये गौर विहित कीर्तन नहीं है, ऐसा बहुत कीर्तन मिलेगा। गाया और सब लोगों को पसीना हो गया और नाच रहा है, कीर्तन खत्म हुआ तो चाय बीड़ी लाओ। तो ये गौर विहित कीर्तन नहीं है, मृदंग भी बजा रहे हैं लेकिन गौर विहित कीर्तन नहीं है। ये कीर्तन कैसा है? ये तो कीर्तन करने के बाद भोग नहीं भूला तो भगवान का भजन कहाँ से आया, भोग ही याद रह गया ना। तो ये गौर विहित कीर्तन नहीं। मृदंग बाजे तो अवसर चाहिए, मृदंग कहाँ भाग रहा है वहां जाना चाहिए कीर्तन में, लेकिन कीर्तन कौन सा होना है? गौर विहित कीर्तन सुनिए। आनंद हृदय नाचे, हृदय आनंद में नाचता है, शरीर भी नाचता है, शरीर नहीं नाचे तो हृदय तो नाचना चाहिए कीर्तन में। जुगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद हो। या जुगल मूर्ति कौन है? राधा कृष्ण। और जुगल मूर्ति कौन है? चैतन्य महाप्रभु, वो भी जुगल मूर्ति है। और राधा कृष्ण एक में है, वो तो राधा कृष्ण अलग है, जुगल मूर्ति दोनों। गौर हमारा बोल दिया वही जुगल मूर्ति है, और राधा कृष्ण भी जुगल मूर्ति। उसको देखने से मेरे मन को बहुत आनंद मिलता है। तो क्या मिलेगा वहां? परम आनंद मिलेगा। गौर मूर्ति देखेंगे तो फिर वहां जाएंगे तो क्या मिलेगा? प्रसाद सेवन, ये तो सबको अच्छा लगता है भाई। भगवान के मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, प्रसाद सेवन सेवा करते हो ये सकल परपंच जाय। सकल परपंच जाय है तो दुनिया में सबसे बड़ी परपंच क्या है? खाना कमाना है ना। सबसे बड़ी दुनिया में परेशानी क्या है? रोटी कमाना ना। और भगवान के पास जाने प्रसाद खाएंगे तो परपंच अपने आप चली गई, कुछ करने की जरूरत नहीं। दुनिया में परपंच क्या है? सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी, आपको मालूम है आज टमाटर क्या भाव है बाजार में, चीनी क्या भाव है? पता नहीं, और रोज खाता है। रोज सुबह 8 बजे इसके सामने थाली के ऊपर गोवर्धन पहाड़ जितना अन्न आएगा, सब्जी आएगी, आलवा आएगा, पूरी आएगा और खाएगा। इसको पता नहीं है कितने का आ रहा है। इसको बोलते हैं परपंच जाए। क्यों परपंच जाए? कि प्रसाद से भी प्रसाद सेवा कर रहा है। कहाँ प्रसाद सेवा करे? जुगल मूर्ति भगवान के पास बैठता है और प्रसाद खाता है और परपंच गया। पता नहीं दुनिया में क्या रेट बढ़ गया, इसको कोई चिंता नहीं। ब्रह्मचारी को कोई चिंता है नहीं, है ना? मालूम नहीं है रेट कितना बढ़ गया। हमको भी कभी कभी घर में जाते हैं ना तो कहते हैं दाल 80 रुपया किलो। हमको आज तक मालूम नहीं, हम तो रोज खा रहे हैं, हमें मालूम नहीं कितने की है। दुनिया जो लाए उसको चिंता, हमको तो चिंता है नहीं। तो ये परपंच जाए। एक माँ थोड़े दिन 4-3 दिन पहले हम रायपुर थे, एक महात्मा बोलता था कथा में, एक आदमी पीछे बैठता था आकर। तो हमने पूछा भाई तुमको कक्षा में अच्छा क्या लगता है? बोला वो तो पता नहीं 2 घंटे में आंखता हूँ, यहाँ ठंडा पंखा चल रहा है, नींद आती है सो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है कथा में। और फिर कथा के बाद फ्री में प्रसाद मिलता है। बस प्रसाद मुफ्त में मिले, सोने इसके लिए दुनिया में दुखी हो रहे ना, सोने के लिए जगह चाहिए और खाने के लिए कुछ है, दोनों यहाँ कथा में मिलता है। तो परपंच तो हमारी समाप्त हो गई, तो इससे ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है कथा से? दुनिया में दो ही तो चीजें चाहिए, सोने के लिए नींद चाहिए और खाने के लिए कुछ चाहिए। तो यहाँ प्रसन्न सकल परपंच जाए। परपंच का मतलब दुनिया की चिंता, क्या खाएंगे। सबसे बड़ी हमारी चिंता क्या है? क्या खाएंगे। कहीं यात्रा में भक्त जाते हैं ना, पूछते हैं प्रसाद कहाँ है, रहेंगे कहाँ, कोई नहीं पूछता है भगवान की लीला का स्थान कहाँ है। वहां भी वही पूछते हैं प्रसाद कहाँ है। हमारा कमरा किधर है, हमारा प्रसाद कहाँ है। और ऐसा दिमाग में ये भूत बिठा दिया है, कोई नहीं कहता है कि भगवान की लीला कहाँ हुई, कोई नहीं पूछता कथा कहाँ हुई। सभी दो बातें पूछते, प्रसाद कहाँ है, कोमरा कहाँ है, कोमरा कहाँ है, प्रसाद कहाँ है। अरे यही तो छोड़ने के लिए आए हैं यहाँ धाम में, कि देख प्रसाद तो भूत थोड़ी देर भूल जाओ, तो हम इसी के पीछे पड़े रहेंगे। प्रसाद सेवन सर्व परपंच जाए, सकल परपंच जाए। तो भगवान का प्रसाद भगवान की कृपा है, सारा परपंच जाए। और सबसे बड़ी चीज है क्या, प्रभुपाद ने एक बात विशेष कही है कि जब लोग साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं तो उनके सारे मतभेद समाप्त हो जाते हैं, सारे झगड़े समाप्त होते हैं। पार टेकिंग प्रसाद टूगेदर ऑल द डिफरेंसेज आर रिकनसाइल्ड। भक्त साथ में प्रसाद लेते हैं ना मंदिर में तो ज्यादा झमेले नहीं होते, तो घर के अंदर भी प्रसाद परिवार को साथ बैठ के लेना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगे तब परिवार वाले बैठ के कीर्तन करें, भोग आ जाए तब प्रसाद साथ बैठ के खाएं। पुराने जमाने में सबसे बड़ी घर में जो मां दादी होती थी सबको बिठा के प्रसाद खिलाती थी, और खाओ और खाओ और खाओ, प्रेम से खिलाती थी, तो उसमें प्रेम बढ़ता है। अभी तो लोग प्रसाद कहाँ खाते हैं, प्लेट में उठाएंगे या तो टीवी के सामने बैठेंगे, नहीं तो बीवी के सामने बैठेंगे। प्रेम से बैठ के कहीं खाएंगे ऐसा माहौल नहीं रह गया, नहीं खाते हैं ना साथ लोग प्रसाद, इसलिए सब घरों में झगड़े हैं। इसलिए प्रसाद साथ खाना चाहिए भक्तों को। प्रसाद संग में खाने का बहुत बड़ा महत्व है। जब से हमने संग में प्रसाद खाना छोड़ दिया तब से हमने संग में भ्रम में रहना छोड़ दिया। अब हम बहुत दुखी हैं, दो आदमी रहते हैं बस और कोई देखने वाला नहीं है, एक पे तकलीफ हो गई, कोई सहायता करने वाला नहीं, बहुत बड़ी समस्या हो गई। किसने वो बड़ा अच्छा वचन लिखा है, पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली थी फिर हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई। जब न्यूक्लियर फैमिली हुई तो अब तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह सब घूम रहे हैं। किसी को कोई स्थान नहीं है अभी, एक इधर घूम रहा है एक उधर घूम रहा है, जब सर्किल में घूम रहे हैं कोई अपनी जगह पे नहीं आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या होगी, सब टूट फूट गया, क्यों, साथ खाना छोड़ दिया। और बाहर खाना बहुत बड़ा अगम पापम, बाहर नहीं खाना।
न्यूक्लियर फैमिली हो गया तो वह एक साथ खाने का सवाल ही नहीं होता।
हाँ
तो घूमते भटकते रहेंगे,
बस बस बहुत भटके। एक सुबह डब्बे में गरम गरम प्रसाद बनाती है पत्नी प्रेम से, लेकिन ले जाके ठंडा करके 6 घंटे के बाद खाता है। 6 घंटे के बाद ठंडा करके खाता है, 3 घंटा कितना बड़ा सुख है बेचारे को। अरे कृष्ण, वो कमा किसके लिए, बोले खाने के लिए। तो खाना तो तुम्हारे साथ है, खाता क्यों नहीं है, खाना नहीं खाएगा, सारा दिन भागेगा दौड़ेगा। कमाना खाने के लिए कमाता है लेकिन खाना नहीं मिलता। तो ये बात बहुत है कि प्रसाद सेवे, कहाँ प्रसाद मिलेगा, युगल मूर्ति देखोगे तो प्रसाद मिलेगा। प्रसाद भगवान का होता है, बाकी सब खाना होता है, वो खराब करता है सब खाना खराब, खाना खराब खाना खराब हो जाएगा, मतलब खाना खाओगे तो खराब हो जाओगे, प्रसाद खाओगे तो परपंच जाएगी। होटल में खाना मिलता है, मंदिर में प्रसाद मिलता है, दोनों में अंतर है। होटल में क्या मिलता है? खाना, उससे क्या होता है? आदमी खराब। और मंदिर में क्या मिलता है? प्रसाद, उससे जाता है परपंच। होटल में वैसे भी खाने का आए, खा के आएंगे तो परपंच आएगी ना, पैसा इतना बड़ा बिल देके आएंगे तो परपंच ही लाएंगे और क्या। 300 रुपये वाली थाली खा के आएगा, फिर सोचेगा खाया तो हमने 150 रुपये बनी, 150 तो बेकार के गया, पहले तो ऐसे सोचेगा। और फिर क्या करेगा? 300 का तो कुछ और खाओ, पैसा तो पूरा करना है। और फिर घर में आके बीमार होगा, फिर डॉक्टर को बुलाए, दूसरी पंच ₹1000 वाली थाली है तो ज्यादा खाना पड़ेगा, पेट तो एक ही है। अब वो पैसा पूरा तो कर रहा है तो जबरदस्ती खाएगा, और फिर बीमार होगा, फिर दूसरी परपंच। मंदिर में मुफ्त का है, फ्री का है, तो ज्यादा खाने की जरूरत नहीं, जितना है उतना खाओ, कुछ नुकसान तो होने वाला है। तो परपंच गई तो वहां पर खाना खाएगा, होटल में मिलता है खाना और मंदिर में मिलता है प्रसाद। और यहाँ जुगल मूर्ति देखती है, वहां क्या देखते हैं? भूत मूर्ति। 12 ऐसे खड़े होते हैं भूत की तरह, ऐसे करते हैं भूत के। उनको आपसे प्रेम है कि दरवाजा खोलता है होटल वाला आपको जानता है, आपसे प्रेम है? नहीं ना, वो तो मशीन भूत की तरह खड़ा ऐसे करेगा, ऐसे बंद करेगा, नहीं भूत रोबोट की तरह खड़ा होता है, उसको कोई आपसे प्रेम नहीं है। और मंदिर में जाएगा तो भक्त बोलेगा आइए आइए पधारिए बैठिए प्रसाद खाइए, प्रेम से बोलेगा, उसका प्रेम प्रेम कुछ नहीं है, तो मशीन की तरह काम करता है। जुगल मूर्ति कहाँ दिखेगी? मंदिर में। और माया मूर्ति कहाँ दिखेगी? बाजार में। बाजार में देखिए कितनी माया मूर्ति है, ड्रेसें पहनी हुई बाहर खड़ी होती हैं ऐसे, हाँ माया की मूर्ति। सब बाजार के अंदर मार्केट में जाके देखो कितनी मूर्तियां खड़ी हैं, लड़की की लड़के की, कोई पैंट पहन के कोई क्या पहन के, ये माया मूर्ति। माया मूर्ति के ग्राहक बहुत हैं, मंदिर के अंदर कम जाते हैं और सुपर मार्केट में बहुत लोग जाते हैं। तो वहां से परपंच ही लाते हैं वापस में। परपंच सबसे बड़ी क्या है आजकल की पता है? इतना बड़ा पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हुआ है, ले जाओ पैसा बाद में देना, अब ले जाओ गाड़ी पैसा बाद में देना, हमको भी चौक हो गया, लेके आओ पैसा बाद में देंगे, पैसा देना तो हमको पड़ेगा ना। और 100 रुपये की चीज का 140 रुपये देना पड़ता है, इतना तो ब्याज देना पड़ता है, और देना पड़ता है हर महीने। तो हर महीने की 25 तारीख के बाद हम साल में ऐसे करना शुरू करते हैं पैसा देना है, इसलिए बहुत से लोगों के बाल आस्ते आस्ते कम होते जा रहे हैं। परपंच है, परपंच है। कमाने से ज्यादा खर्चा करके सब चीजें लाए हुए हैं। घर कैसे खरीदा है? हमने 1500 रुपया डिपॉजिट दे दिया, घर कितने का है? बोला 25 लाख का है, 1500 में 25 लाख का घर ले लिया। बुक कर दिया है। अब कब पैसा पूरा होगा? तब तक परेशानी से परपंच रहेगी कि नहीं रहेगी? तो सकल परपंच से दुनिया की से छूटना है तो भगवान की युगल मूर्ति का दर्शन करो और प्रसाद खाओ। जे दिन ग्रह भजन देखी ग्रहते गोलोक भाए, जैसे आज यहाँ बैठे हैं ना रसिकानंद के घर में, क्या हो रहा है? भगवान की कथा कीर्तन हो रहा है, तो आज ये गोलोक बन गया। इसको बोलेंगे जे दिन, जिस दिन घर में हरि कीर्तन होता है उस दिन घर गोलोक हो जाता है, और नहीं तो क्या होता है? भोलोक। भोलोक का मतलब, भो का मतलब डर, नहीं तो गोलोक नहीं तो भोलोक, भो का मतलब भय में रहेगा। फिर तो दुनिया में तो भगवान का कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन नहीं तो शमशान के समान है घर, मुर्दे रहते हैं उसके अंदर समझो, जीते आदमी होगा तो भगवान का कीर्तन। जे दिन का मतलब रोज लोग नहीं करते हैं, जे दिन जिस दिन घर में कीर्तन हो, गृह भजन देखी ग्रहित गोलोक भा, गोलोक भाए चरण सिद्धु देखिया गंगा। चरण सिद्धु का मतलब भगवान के चरण से निकली हुई गंगा। गंगा कहाँ से निकली है? भगवान वामन देव के सीधे पांव के अंगूठे को धोया कारण सागर के जल, वहां से गंगा आई, तो उसको चरण सिद्धु बोलते हैं भगवान की। इसको विष्णुपदी बोलते हैं, गंगा का दूसरा नाम है विष्णुपदी, भगवान विष्णु के चरण से निकली है, इसका नाम है विष्णुपदी। विष्णुपदी चरण सिद्धि, ये चरण सिद्धु का मतलब विष्णुपदी, भगवान के चरण से निकली है। चरण सिंधु, भगवान के चरण से निकली हुई नदी, सिंधु का नदी कहते हैं। क्या नाम है उसका? देखिए गंगा, गंगा को देखें, सुख साफ सीमा न पाए। गंगा कहाँ दिखती है? मायापुर में गंगा देखते हैं गौरंगा महाप्रभु। रोज आरती में क्या गाते हैं? जाह्नवी तट बने जग मन लोभा, जाह्नवी तट बने। तो गंगा, जाह्नवी को देखेंगे, गंगा को देखते भगवान के चरण से निकली। एक बार कहीं आगरा में दो पक्षों के बीच में बात हो रही थी कि गंगा पवित्र है कि यमुना पवित्र है। तो किसने कहा गंगा बहुत पवित्र है, भगवान के चरण से निकली है। तो यमुना वालों ने बोला भगवान के केवल 54 के अंगूठे को धोके गंगा निकली है, यमुना में पूरे का पूरा भगवान रोज नहाते थे, तो गंगा यमुना अच्छा है। तो भगवान रोज उसमें जल क्रीड़ा करते थे, नहाने जाते थे, तो यमुना पवित्र हो गई ना। तो यमुना वालों का पक्ष भारी हो गया। आपस में उनका चल रहा था बात, तो जीवा गोस्वामी को शायद बुलाया, उस वक्त जीवा गोस्वामी थे वृंदावन में। तो पहले जीवा गोस्वामी ने कहा गंगा इसलिए बहुत बड़ी पावन पवित्र है क्योंकि भगवान के चरण से निकलती है, लेकिन यमुना अति पावन है क्योंकि भगवान ने उसके अंदर जल क्रीड़ा करी, पूरे का पूरा नहाया। तो फिर यमुना वाला ताली बजाने लगा, गंगा वाला बड़ा परेशान हो गया। फिर जीवा गोस्वामी बोलते हैं गंगा और यमुना के मिलने के बाद गौरंगा महाप्रभु उसमें रोज नहाते थे, इसलिए गंगा भी परम पवित्र। मायापुर में गंगा ने महाप्रभु गंगा में नहाए मायापुर में। तो गंगा भगवान के चरण से निकली तो नहीं है, लेकिन भगवान ने उसमें जल क्रीड़ा की है, यमुना में की है वृंदावन में और गंगा में की है मायापुर में। तो इसलिए उसको देखने से, समुन्द्र भी देखते हैं तो चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर का स्नान कराया था, इसलिए चरण भी वो सागर भी हमारे लिए तीर्थ है। महाप्रभु वहां प्रतिदिन नहाने जाते थे जगन्नाथपुरी में, हिंद महासागर में। तो ये स्थान सब, तो गंगा देखने से बड़ा मुझे आनंद आता है क्योंकि भगवान की याद दिलाती है। तुलसी देखिया जुड़ाए प्राण, माधव तोषणी जानी। घर में तुलसी होनी चाहिए, रोज उसका दर्शन होगा तो जुड़ा है प्राण, बड़ा सुख मिलेगा। क्यों सुख मिलेगा? क्योंकि ये माधव को बहुत प्रिय है। माधव तोषणी जानी, माधव को इससे संतुष्टि होती है। कितना भी भगवान को प्रसाद अर्पण करो, तुलसी का पत्ता नहीं है तो प्रसाद पसंद। गोवर्धन को, गोवर्धन की जब पूजा की तो ग्वाल बालू ने तो बहुत प्रसाद बनाया दिया और गोवर्धन का रूप धारण करके सब कृष्ण खा गया। और खड़ा हुआ कृष्ण बोलता देखो हमारा देव खाता है, आपने कभी खिलाया? आपने कभी दिया था, खाया था? इंद्र ने बोला नहीं खाया। बोले हमारा देव खा रहा है। फिर बोला आनी और लाओ, आनी और लाओ, आनी और। उस जगह का नाम ही हो गया आनी और। गोवर्धन परिक्रमा एक जगह उसका नाम है आनी और लाओ और लाओ और लाओ। तो आपने बोला कुछ है नहीं, क्या करना चाहिए? बोला तुलसी का पत्ता लेके दे दो। तुलसी का पत्ता रखा, बस हो गया संतुष्ट। तुलसी का पत्ता मिल गया तो संतुष्ट हो गया। और यही अद्वैत आचार्य ने देखा, भगवान को बुलाना है तो क्या रास्ता अच्छा है? और चलू भर गंगा जल से, चलू भर जले न तुलसी पत्ते, चलू भर जले न तुलसी पत्ते, तुलसी के पत्ते से चलू भर जल से भगवान को खरीदा जा सकता है। तुलसी के पत्ते से भगवान संतुष्ट इतना होता है। एक बार नारद को द्वारका की रानियों ने कृष्ण को बेच दिया, आप थोड़ी देर के लिए तो बेच दिया। फिर नारद बोला मैं लेके जाऊंगा। बोला भाभी लेके कैसे जाओगे? बोला फिर वापस लेना है तो इसके बराबर तोल के हमको सोना दो। तो सब अपने आभूषण लाए, एक बार कृष्ण तरफ बैठा, एक तरफ सब सोना डाल दिया। कृष्ण भारी, क्या करना चाहिए? फिर एक तुलसी का पत्ता रख दिया तो कृष्ण ऊपर हो गया तुलसी के। तो तुलसी से भगवान को संतुष्टि इतनी होती है तो कोई भी भोग भगवान का बगैर तुलसी के नहीं लगता है। तो माधव को तोषण करने वाली तुलसी, इसलिए घर में तुलसी होनी चाहिए। तुलसी का दर्शन करने वाला कभी यम का दर्शन नहीं करता है। तुलसी की माला गले में डालने वाला कभी भी यमलोक में नहीं जाएगा। तो तुलसी प्राण जुड़ाए, क्या जुड़ाए का मतलब, आपका मतलब क्या बंगाली में क्या बोलेंगे? बहुत बहुत मन को सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? क्यों माधव तोषणी जानी, गौर प्रिया शाक सेवने जीवन सार्थक मानी। गौर प्रिया शाक, जो भगवान को शाक पसंद था, ये गौर प्रिया शाक, शाक में हरी सब्जियां, हरी पत्ते की चीजें, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त पृच्छति। तो यहाँ पत्रम पुष्पम के हिसाब से गौरंग महाप्रभु ने को ये सब्जियां जो अच्छी लगी थी वो अगर मुझे प्रसाद में मिल जाए, संदेश देखी नहीं लिखा है, गुलाब जामुन पनीर देखी नहीं, और साक सेवन है, साक सेवन ने लिखा है, और भक्तों को साक बोलेंगे नहीं पनीर। लिखा जगह गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक माने, भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा, जहां भी कृष्ण भजन के लिए अनुकूल हो जहां भी, और फिर प्रति दिवस रोज का कोई जगह ऐसी देखनी चाहिए, कोई समय ऐसा देखना चाहिए जब कृष्ण का भजन कर ले, परम सुखे स्वीकार कोरी होता है, जहां भी जब भी मौका मिले, गाड़ी में हो, ट्रेन में हो, बस में हो, घर में हो, लेकिन कृष्ण भजन के लिए कोई अनुकूल स्थान ढूंढ लिया करो, तभी सुख मिलेगा। कहीं भी हो, जहाज में हो तो भी भजन किया जा सकता है, दुनिया में कहीं भी हो, लेकिन जिस दिन रोज प्रतिदिन मुझे कोई समय जरूर ऐसा मिलना चाहिए जब मैं कृष्ण का भजन करूं, वही मेरा जीवन सार्थक है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर का एकादशी के दिन गाने वाला भजन है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। अब किसी का कुछ विशेष जिज्ञासा या प्रश्न है तो पूछिए, कोई विशेष या जिज्ञासा या कोई प्रश्न है आपका, आप प्रचार करते हैं सब, तो कोई ऐसा प्रश्न कोई पूछता है अथवा कोई चीज आपको किसी को बताना है तो उसके विषय में पूछना है तो 10 मिनट के अंदर।
एकादशी में हम लोग तो ऑफिस करता है, जड़ जगत के साथ इतना मिक्सअप है जो टाइम नहीं मिलना, इतना इच्छा है लेकिन टाइम नहीं मिलना, इसलिए बहुत मुश्किल कैसे,
बहुत मुश्किल है। प्राइवेट नौकरी करने वाले कुछ लोग हम जानते हैं, वो बोलते हैं हम संडे की छुट्टी नहीं करेंगे, हम एकादशी की छुट्टी करेंगे। लोग कुछ लोग हम जानते हैं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं, बोलो नहीं हम संडे का काम करेंगे आपका, लेकिन हम एकादशी के दिन छुट्टी करेंगे। कुछ लोग एकादशी की छुट्टी करते हैं, प्राइवेट नौकरी वाले एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नौकरी वाले एकादशी की छुट्टी नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। क्या करना चाहिए, लेकिन अपना काम है, जैसे वकीलों के लिए डेट अपनी ऐसे एडजस्ट करनी चाहिए कि एकादशी के दिन पहले, छह महीने पहले डेट्स को एकादशी रख दो कि उस दिन कोई काम नहीं रखना है, उस दिन काम रखना ही नहीं, हमारे हाथ में जितना है उतना करने का प्रयास करना चाहिए कि उस दिन और कुछ क्या, हम दुनिया के लिए बहुत जी रहे हैं, कुछ एक दिन अपने लिए जीना चाहिए ना, कम से कम 15 दिन में एक दिन तो अपने लिए जीना चाहिए, कुछ साधन भजन के लिए, दुनिया के लिए तो रोज जी रहे, तो एकादशी का दिन अपने लिए साधना के लिए जीना है, और कोई काम करने की इच्छा न करे तो अच्छा है, और बच जाए काम करने से अच्छा। आप तो इसलिए आपको पकाने का काम भी बंद कर देते हैं, कच्चा कुछ खा लिया करो, सब्जी बस हो गया, फल वल खा लिया, दिन गुजर गया, दूध ले लिया, छाछ ले लिया, हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे हो तो अच्छा है, और नहीं तो उस दिन मंदिर में आओ, उधर ही खाओ, उधर ही भजन करो, झंझट ही खत्म, और बच पकाने का भी झंझट खत्म करो, जाके मंदिर में बैठ जाओ।
बच्चा
ओ ये आ गया बच्चा, इसको ये तो परपंच है, प्रसाद खिलाओ जाएगी। जैसी स्थिति है उसमें वो, इसलिए प्रति दिवस से जहां भी जॉब भी टाइम मिले तो भजन करना चाहिए, इसलिए एक शब्द में सबको भक्ति विवर का, इसलिए प्रभुपाद ने कहीं लिखा है गृहस्थियों के पिए, ये सुबह समय नहीं होता है, जैसे मानो मंगल आरती का अथवा वो नहीं होता है, लेकिन स्त्रियों को प्रायः 3 से 5-6 बजे तक टाइम होता है शाम को, क्योंकि भोजन हो गया सब लोग चले गए, ये टाइम फ्री होता है गृहस्थों के लिए, ये टाइम अच्छा है सत्संग भजन का लिए। तो ऐसे हरेक कुछ भावार्थ में प्रभुपाद ने विशेष लिखा है भागवत में कि जो टाइम ब्रह्मचारियों का है मंदिर में रहने वाले, वो गृहस्थों के लिए नहीं एडजस्ट हो पाएगा, अथवा जो शिक्षा है ब्रह्मचारियों के लिए मंदिर में वो आपके लिए अप्लाई नहीं हो सकती, आपकी आवश्यकताएं उससे दूसरी है, इनकी आवश्यकताएं दूसरी है, तो आपको अपने समय के अंतर्गत जो दिन प्रतिदिन जो समय भी अनुकूल मिले उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हो सकता है आपके लिए 11 से 12 बजे तक अच्छा टाइम है दिन में जप करने के लिए, क्योंकि सुबह से बच्चों को रवाना करना है, पति चला गया 9-10 बजे, अब 11 से 12 तक 12 बजे फिर भोजन बनाना शुरू करना, 1 घंटा है, तो उस दिन आपका 1 घंटा वो निकाल लो। किसी को शाम को 3 से 4 बजे तक फ्री मिलता है, तो हर एक अपना टाइम जे दिन प्रतिदिन जो टाइम आपको अनुकूल लगे, हर एक व्यक्ति मंदिर वालों के लिए अनुकूल ये है कि सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक जप कर लें, क्योंकि इनका और लोगों का कोई काम है नहीं, तो इनका नियम आपके ऊपर लागू करेंगे तो चलेगा नहीं। वो प्रैक्टिकल नहीं है ना, आपको बच्चों के लिए भोजन बना के भेजना है ना, पति जाएगा काम पे उसको भी देना है ना, तो आप वो नहीं कर सकते। तो आपको जो समय उचित हो उसी समय करो, आप अपना टाइम एडजस्ट करो। आप वो टाइम मंदिर का शेड्यूल आपको मंदिर का नियम वाली आपके ऊपर नहीं लगेगी, उन्हें कर भी नहीं सकते हो, नहीं हो पाएगा, फिर आप दिन में कुछ नहीं कर पाओगे। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए कि जो आपका टाइम अनुकूल है कृष्ण भजन के लिए वो आप ठीक सेट करो। तो इसलिए ब्लैंकेट रूल नहीं बना सकते कि सब लोग ऐसे करते, ऐसे नहीं हो सकता है। सवेरे उठने का नियम जरूर बनाना चाहिए, लेकिन आपको सवेरे उठ के पहले क्या करना पड़ता है, बच्चों की तैयारी करनी पड़ेगी, घर का तो ये नियमावली है ना, तो आप उस हिसाब से अपने टाइम को निकाल। जैसे पूजा रही है, सुबह उठेंगे तो जप नहीं कर पाएंगे, उसको तो ड्रेसिंग करनी है, वो अपना टाइम दूसरा निकाल दे जप के लिए। तो ऐसे आपको भी अपना विशेष कोई टाइम निकालना चाहिए भजन के लिए, दोस्तों को अपना अनुकूल टाइम निकालना चाहिए।
दिन में रात में कोई भी टाइम में जॉब करने से रिजल्ट एक ही होगा क्या? ब्रह्म मुहूर्त में रिजल्ट अलग से,
ब्रह्म मुहूर्त में शांति होती है, उस वक्त में डिस्टर्बेंस नहीं होता है, डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, कहीं मन और भटकता नहीं है, वो काम इसी के लिए समय है। दवाई कुछ खाली पेट खाने वाली होती है तब उसका असर होता है, लेकिन कभी भी खाएंगे कुछ असर जरूर करेगी, लेकिन जब कहा गया उस वक्त खाने से ज्यादा लाभ होगा। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का लाभ ज्यादा है, वो तो ठीक है, जैसे दवाई उसी वक्त खाना चाहिए, तो नाम औषधि है, नाम दवाई है, और उसके खाने का समय ब्रह्म मुहूर्त है, तभी उसका लाभ ज्यादा होता है। लेकिन किसी कारण से एक आदमी नाइट ड्यूटी करता है तो ब्रह्म मुहूर्त में तो वो नहीं कर सकता है, तो उसके लिए ब्रह्म मुहूर्त, उसका ब्रह्म मुहूर्त जब नींद से उठेगा सुबह शाम को 5 बजे तब हो जाएगा। हमें अमेरिका का इस वक्त अमेरिका का आदमी जो है वो उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहा है, अब उधर तो जप हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, लेकिन हम तो यहां खा रहे हैं पी रहे हैं। तो ये समय भी आप अपना एडजस्ट कर ले, क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए, जो प्रैक्टिकल है जो संभव है वो होना चाहिए। एक आदमी रात को 1 बजे आता है काम से, 12 बजे आता है, वो सुबह 4 बजे उठेगा तो सारा दिन कुछ नहीं कर पाएगा, तो कम से कम 6 घंटे आराम, 5 घंटे 5.5-6 घंटे आराम तो देना ही चाहिए। तो ये एडजस्टमेंट करनी चाहिए, लेकिन उस शांत समय होना चाहिए, नहीं तो शांत स्थान ढूंढ लो, जे दिन प्रतिदिन जे कोई जो स्थान शांत कोई ढूंढ लो, वहां बैठ के कर लो, जहां मन कहीं भटके नहीं, डिस्ट्रक्शन न हो, वहां जब करना चाहिए। लेकिन कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, नारद तो चलते फिरते करता है, कहीं बैठा ही नहीं, आचार आसन बना के तो बैठना नहीं, नारद चलते फिरते करता रहता है। प्रभुपाद जपा वाक में सुबह जाते थे, कौन से रोज जाते थे, और जब उसका नाम ही जपा वाक था, लेकिन फिर भी जो ट्रेनिंग लेते हैं मंदिर में उनके लिए तो नेम से ब्रह्म मुहूर्त में करना ही है। लेकिन आप लोगों की जैसी व्यवस्था है वैसे करो, जैसे आपके लिए सुविधा है वैसे करो, जो प्रैक्टिकल है वो करो, इम्प्रैक्टिकल नहीं बनो। आप मानोगे सुबह 3-4 बजे उठ के काम करके फिर कोर्ट में जाएं, जहां केस के समय आपको नींद आए तो फायदा कोई नहीं है, आप अपना कर्तव्य ठीक नहीं पालन कर पाओगे ना। एक बार प्रभुपाद को किसी ने आके कहा कि ये लीडर जो हमारा है ये जप नहीं कर रहा, इंग्लैंड में। प्रभुपाद ने उस दिन उत्तर क्या दिया, बोला अर्जुन ने कभी जप नहीं किया था, क्योंकि वो तो लड़ाई कर रहा था, उसको टाइम ही नहीं था जप करने का, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ था। अर्जुन के हाथ में माला तो हमने कभी नहीं देखी, क्यों? वो कृष्ण के आदेश के ऊपर जो लड़ाई कर रहा था, हो सकता है आपके लीडर को इतनी व्यवस्था में काम लगा हो कि उसको जप करने का टाइम नहीं मिलता। एक दिन ये उत्तर दे दिया, और एक दिन कलकत्ता में किसी ने बोला जप नहीं कर रहा, बोला आई शुड नॉट बी लीडर, वो लीडर नहीं होना चाहिए, अगर जप नहीं करता तो बाकी भक्त कैसे करेंगे, यहां दूसरा उत्तर। तो प्रभुपाद देख रहे थे ये लीडर जो है, एक और भक्त था वृंदावन में, बंगाल से था, वो 3 बजे किचन में जाता था रोज, तब तो आग जला के भगवान का भोग बनता था चूल्हे के ऊपर, और रात को 10 बजे तक रोज वो कुकिंग करता था, तब जब कब करेगा। विभू चैतन्य उसका नाम था, तो उस वक्त जीबीसी प्रभुपाद का सेक्रेटरी ब्रह्मानंद था, तो उसको बोलते प्रभु, अंग्रेजी नहीं समझता था, बंगाली था ना, हाथ डाले बोला जप हरि हरि बोल जप जप बोले हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभुपाद को जाके बोला, प्रभुपाद अंदर जो भोजन बनाता है विभू चैतन्य जप नहीं करता। प्रभुपाद हाउ आई एम हियरिंग हिम ऑल द टाइम जपिंग हरे कृष्ण। प्रभुपाद का कमरा किचन के पीछे, वृंदावन के किचन के, बोले जब वो भोजन भोजन बनाता है तो मधुर मधुर बंगाली में कृष्ण कीर्तन कर रहा है, आप कैसे बोलता है जप नहीं करता है? वो तो जितना देर सेवा करता है भगवान का नाम ही उच्चारण कर रहा है। और फिर प्रभुपाद ने देख के उसको बोला आर यू चैंटिंग, कि तुम जप कर रहे हो? तुम तो माला गले में डाल के घूम रहे हो, वो तो सुबह 3 बजे से जप शुरू करता है, मैं सुन रहा हूँ रोज। प्रभुपाद तो बंगाली सुन रहे समझते थे और वो गाता ही रहता था कीर्तन, वो जो कपकाता था तो हरे कृष्ण वो अपने मधुर सुर में गा रहा था, दिस इज कीर्तन। प्रैक्टिकल, प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, बहुत प्रैक्टिकल थे। लेकिन हमारे को जब शिक्षा देनी है तो उसकी नियमावली है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है उसके अनुसार हमारे को करना चाहिए प्रैक्टिकल। और प्रभुपाद ने श्रुत कीर्ति को एक दिन बताया, जब मैं ग्रस्त था, प्रभुपाद बोलते जब मैं ग्रस्त था तो मैं 4 माला सुबह सवेरे जपता था, 4 माला भोजन दोपहर से पहले, 4 माला शाम के भोजन से पहले और 4 माला सोने से पहले। इन दिस वे आई यूज टू फिनिश 16 राउंड्स। अब ये प्रभुपाद का श्रुत कीर्ति नो प्रॉब्लम, व्हाट इज ए प्रॉब्लम करके पुस्तक है, उसमें उसने अपने प्रभुपाद की को मुझे उसने बोला, मुझे प्रभुपाद ने कहा ऐसे मैं ग्रस्त में 16 माला रोज करने का प्रयास करता था, 4 सुबह सवेले, 4 भोजन से पहले, हर भोजन से पहले 4 माला जपता था और रात को सोने से पहले 4। दिस वे आई वॉज प्रैक्टिकली, व्हेन आई वॉज ग्रस्त आई वॉज टू बिजी, मैं बहुत, मेरे को काम करना पड़ता था, सुबह शाम तक काम करना पड़ता था, लेकिन मैं ऐसी माला पूरी करता था। प्रभुपाद ने यह लिखा हुआ डॉक्यूमेंटेड है। इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आपको जो भी व्यवस्था है उसके अनुसार अपना जप करेंगे। प्रभुपाद से ज्यादा तो कोई शुद्ध भक्त नहीं है, वो तो ऐसे जप करने के बाद भी इस्कॉन के संस्थापक आचार्य और विश्व के जो है भगवान के नेता हो गए, तो ये भी प्रैक्टिकली सामने लिखी हुई चीजें हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि हमें टाइम है फिर भी सुबह जप नहीं करें और बाद में करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको जो व्यवस्था हो उसके अनुसार करना ठीक है। नहीं कि प्रायः हमारे प्रचारक मंदिर से आते हैं, मंदिर में मंदिर का नियम चलता है, तो उनकी ट्रेनिंग वही है, लेकिन वो ट्रेनिंग आपको आपके ऊपर अप्लाई नहीं हो पाएगी तो आप हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, क्योंकि वहां की वातावरण दूसरा है, वहां उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ व्यवस्था अपने आप होती है, आपको तो हर एक चीज खुद करनी, तो आपकी आपको प्रैक्टिकली कैसे भक्ति करनी है वो देखना चाहिए, नहीं तो भक्ति के अंदर आपको थोड़ी कठिनाई होने लगेगी। तो प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है, कोई चीज थ्योरेटिकल होती है कोई प्रैक्टिकल होती है। और कोई प्रश्न बोलो बेटा।
एकादशी में फल खाने से और कटिंग फ्रूट प्रसाद खाने से एक ही फल मिलेगा?
फल तो फल खाने से भी नहीं मिलेगा। शास्त्र को देखेंगे तो उसमें लिखा है एक बार खाएगा आधा फल मिलेगा, 2 बार खाने के बाद कोई फल नहीं है, शास्त्र में जैसे लिखा है 2 बार खाएगा कोई फल नहीं है। एक बार प्रभुपाद रात को 12:30 बजे इंग्लैंड में आए, रात को 12:30 बजे, तो दूसरे दिन एकादशी थी और सारे भूखे थे, प्रभुपाद बोला अब तो 12 बज गए अब हम खाएं, कल एकादशी है। प्रभुपाद कहे वी आर नॉट रिचुअलिस्टिक, गो अहेड एंड ईट, 12:30 1 बजे खा लो कोई बात नहीं, कल एकादशी है तो हमका हमारा दिन सूरज उगने से होता है, रात को 12 बजे नहीं होता है। वी आर नॉट रिचुअलिस्टिक। प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे, वो बहुत प्रैक्टिकल थे, वो बहुत जो बात समझ में आए वैसे करते थे, ऐसे नेम को पकड़ के नहीं बैठते थे। मानो वैसे तो एक किसको एक बार खाने की जरूरत है जो मंदिर में रहता है, साधन करता है, कहीं जाना नहीं है, मानो आपको सारे घर का काम करना है और शाम को आप काम नहीं कर सकते, थोड़ा खा लेना चाहिए। फल के लिए नहीं कर रहे, भगवान के भक्ति के लिए कर रहे। हमारा फल दुनिया का फल नहीं है, اس لیے ہمارے کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے جو پریکٹیکل ہو. پرچار کرنے جانا ہے, ہمیں کوئی ضرورت ہے, ایک گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے کیرتن کرنا ہے, تو کچھ نہیں کھائیں گے تو نہیں ہو پائے گا, تو کھانے میں کوئی آپتی نہیں ہے. لیکن ایسے بیکار کچھ بھی نہیں کرے صرف دن میں کھاتا ہی رہے وہ ٹھیک نہیں. آپ کا کیا پرشن؟ اس کو بولتے سوتک, ہو سوتک بلک جاتا ہے اس کو سوتک بولتے. اگر گھر میں بھگوان کی استھاپنا کی ہوئی ہے بھگوان ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہم دوسرے کسی کو بلاتے ہیں وہ اس دن بھوگ لگا کے جاتا ہے. اچھا اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے, آپ کے اپنے گوتر کے لوگوں کو سوتک لگتا ہے. ہاں ہاں تو وہ کر سکتی ہے, وہ تو بھوگ وہ بھوگ وہ بنانے اسی کو بولا بنا لے, تو بڑی کو بنا بڑی کو بلا لو, اور کوئی نہیں ہے تو بھگوان کو یاد کر کے لگا دو. ویسے نیماولی ہے کہ بچی کا جو گوتر دوسرا ہو جاتا ہے تو اس کو بلا کے اسی کے دوارا کرتے. اس کے لیے بھکت سماج کی ضرورت ہے. اگر آپ کے گھر میں سوتک ہے تو ان کے گھر سے روز بھوجن آپ کے پاس آنا چاہیے, سب سے اچھا یہ. اس لیے بھکت سماج کی ضرورت ہے کہ ایک کے گھر میں پکانے کا کوئی کارن سے نہیں ہے تو دوسرا بھکت اس کو بھیج دے گا, روز روز تھوڑی سوتک آئے گا. تو سارے بھکت ہیں کیا؟ کتنے بھکت ہیں؟ کتنے بھکت ہیں؟ آٹھ دس وقت ہوتے ہیں تو آٹھ دس متر بنا لو, ایک بار اس سے ایک دن منگانا, دوسری بار دوسرے سے منگا لینا. کبھی مزاق کی بات آتی ہے, بھگوان شری کرشن کے دوار کے اندر 16,108 رانیاں, ہر ایک رانی سے 10 پتر اور ایک کنیا. اب تو روز جنم ہوتا تھا بچے کا, روز سوتک لگے گا تو کھائیں گے کہاں سب؟ بھگوان نے سوتک کو مان کے باہر پیڑ میں ٹانگ دیا, تم باہر یہ کھائیں گے کہاں سے؟ روز یہاں جنم ہو رہا ہے کسی کا. تو ایسے ویسے بھگت ان ریچول سے اوپر ہوتے ہیں, اصل بھکت کے لیے یہ سمسیا نہیں ہے, لیکن ہم اتنے شدھ بھکت نہیں ہیں. اس لیے اچھا ہے کہ جس کا من نہیں کرتا ہے تو بھکت سنگ ہونا چاہیے اور بھکت کسی کو اس کا سہایتا کرنا چاہیے, یہ سب سے اچھا ہے کہ اس کو بھی ضرورت پڑے گی نا. تو ایسے پرسپر میں پریم ہو تو ٹھیک ہے, یہی اس سے اسی سے بھکتی بڑھے گی, پریم بڑھے گا بھکتوں کے بیچ میں. اسی لیے بھکت سنگ کی ضرورت ہے. جیسے آپ کا سنگ ہے تو معلوم ہے اس کے گھر میں سوتا ہے, پوچھنے کی. ہم اپنے زمانے کی بات بتاتے ہیں, کسی کے گھر میں بھگوان نہ کرے کوئی مرتیو ہو جاتی تھی تو کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں تھی, دوسرے جو متر بندھو تھے اپنے گھر سے پنا کے اس گھر کے اندر سب کے لیے بھوجن کی ویوستھا اپنے آپ کرتے تھے. ان کو تو دکھ ہوتا تھا, ان کو ٹائم بھی نہیں ہوتا تھا, تو دکھ میں روتے تھے, لیکن وہ دوسرے لوگ اپنے گھر سے بنا کے سب لاتے تھے, وہ ساری ویوستھا دو لوگ کر لیتے تھے. اسی لیے پہلے ساتھ رہنے کا سکھ ہوا کرتا تھا کہ ہر سنکٹ میں کوئی نہ کوئی. ابھی بھی دبئی میں ہم جب بھی جاتے ہیں دامودر دیش میں, تو ایک ایک آدمی ایک ایک وہاں رہتا ہے, پتی پتنی. ایک کا بچہ اسپتال میں داخل ہو گیا تو ماں کو تو ادھر رہنا پڑے گا, اب پکائے گا کون؟ تو بھکت سنگ میں سب نے کہہ دیا آج تمہارے گھر سے دوپہر کا بھوجن جائے گا, تمہارے گھر سے شام کا جائے گا, جہاں گھر میں کون استری فری ہے وہ جائے گی, ایک گھنٹے بچے کے پاس بیٹھے گی. تو انہوں نے پورا 10 دن کا شیڈول ایسے بنا دیا. تو یہ آپ کے بھکت ورکش کا, بھکتی ورکش کا کیول یہ ادیش نہیں ہے کہ بھائی جب کرنا ہے, یہ بھی ادیش ہے کہ اس کے بھوتک سمسیاؤں کا سمادھان کیسے کرنا ہے. بس بھوتک شریر تو ہے نا, ہم آتما ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن شریر تو لے کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو ہمارا یہ بھی ہے کہ کسی کی لڑکی بڑی ہو رہی ہے, اس کا وواہ کرنا ہے, یہ بھی بھکت ورکش کے انترگت اس کی یہ بھی سمسیا ہے. تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے, وہ بھی دیکھنا ہے. کسی کو کام نہیں ہے تو اس کا بھی سہیوگ کرنا ہے. تو یہ بھی پریکٹیکل بھکت ورکش میں کیول آدھیاتمک استر نہیں, لیکن دونوں استر کے اوپر ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سہیوگ ہونا چاہیے, وہ بھی آوشیکتا ہے. کہ ان کے گھر بھوجن نہیں بن سکتا ہے کسی کارن سے, تو کہاں کون اس بار کون بھوجن کا ویوستھا کر کے وہاں پہنچا دے گا, یہ بھی ہمارا ہی دائتو ہوتا ہے. تب یہ اصل میں آپ کا جو ہے وہ پریم کا سنگٹھن بھکت سنگ چلے گا. नहीं हम माया है मोह है शरीर है केवल हरे कृष्ण तो बहुत अच्छा है लेकिन हम तो हमारे को दुनिया में रह रहे हैं ना तो दुनिया की समस्याओं का भी समाधान हमको ही करना पड़ेगा प्रैक्टिकल होना चाहिए। एक स्त्री गर्भवती प्रभुपाद के पास अर्ली डेज में आई मैं भक्त बन के मंदिर में रहना चाहती हूँ प्रभुपाद कहते तुम गर्भवती हो स्त्री हो अकेली कैसे रहोगी ब्रह्मचारी होती हो गर्भवती हो प्रभुपाद ने भक्तों की तरफ देखा कोई इससे शादी करे इसको तो सुरक्षा चाहिए और किसी के साथ किस कोई भक्त ने कहा ठीक है मैं आपकी आज्ञा के शादी करता हूँ और उसकी शादी करिए और उसके पास जाके रही तो प्रभुपाद प्रैक्टिकल थे तो वो भक्त उसको बनना है आइए गर्भवती भक्त बनना है लेकिन इसका पति नहीं होगा तो इसको देखभाल कौन करेगा किसी भक्त से शादी कराई गर्भवती की और उसने उसकी देखभाल की इससे ज्यादा और कितना करुणा हो सकती है प्रभुपाद में विदेशी लोगों की बात कर रहे एक लड़का आया ये नौजवान के मैं भक्त बनना चाहता हूं लेकिन 14 साल की मेरी बहन है उसको भी मेरी माँ तो अभी दूसरी है पहली माँ तो छोड़ गई मेरे पिताजी को वो इसको परेशान कर रही है मेरे साथ रहेगी अरे तो 14 साल की बच्ची तो भक्त नहीं बन सकती माइनर है लेकिन ये भक्त बनने आया है प्रभुपाद ने 18 साल की लड़की शादी की हुई थी मालती को बोला इसको तुम अपनी लड़की अडॉप्ट कर लो इसको अब तुम अपनी बच्ची गोद में ले लो क्या बोलते बच्ची गोद में ले लो या आपकी भाषा में अडॉप्ट कर लो अंग्रेजी में वो बोलते मैं 18 साल की 14 साल की लड़की को मैंने गोद में लिया उसको पढ़ाने के लिए स्कूल जाके दाखिल करने गई प्रभुपाद प्रैक्टिकल किया प्रैक्टिकल थे ये समस्याएं भी सुलझाई भक्तों की प्रभुपाद ये बड़ी समस्या है कि नहीं है तो पाश्चात्य देशों की लड़की गर्भवती आके मैं भक्त बन दो उसका विवाह करने का झंझट भी प्रभुपाद ने अपने दिमाग के ऊपर उठाया तब भक्ति कर पाएंगे ना प्रैक्टिकल उसका ये भी तो करना पड़ेगा ना तो ये देखना चाहिए कि प्रैक्टिकल हम लोगों को क्या सहयोग दे सकते हैं साथ में और कितने दयालु थे प्रभुपाद इतने कितने हृदय में करुणा थी कि भक्त बनने आया है तो इसके लिए कोई न कोई व्यवस्था करनी ही चाहिए तो ये रोटी तो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत इतने बड़े ये तो कितने मुश्किल काम है दोनों ये भी प्रभुपाद ने कराए बोलो बोलो कौन मना करते हैं हम ऐसे बोलते हैं आप वैसे बोलो हम आपको मना थोड़ी कर रहे हैं क्योंकि तो बाद में तो बोलना ही पड़ेगा कि बोलना पड़ेगा तो बाद में करो आगे करो क्या फर्क पड़ता है पहले नीम खाते हैं बंगाल में फारे बाद में मिष्टी खाते हैं इसमें कौन सी परेशानी है तो अच्छा है पहले बाद में मिष्टी खा लेना तो बहुत अच्छा वाला बात है तो कौन सी परेशानी है उसमें असल में हरे राम मंत्र वेदों का मंत्र है सबको अधिकार नहीं उच्चारण करने का स्त्री को वैश्य को शूद्र को अधिकार ही नहीं है जपने का क्योंकि वेद का मंत्र है महाप्रभु ने कृपा करके सबको जपने का अधिकार दिया और हरे कृष्णा कृष्णा आगे कर दिया तो अब वेद का मंत्र है भी वेद का और सबको जपने का अधिकार भी दे दिया कोई भी जप सकता एक ये कारण है वैसे ऐसे हरे कृष्णा के रूप में भी लिखा हुआ मिलता है लेकिन प्रायः हरे राम करके रामानुज संप्रदाय आदि ऐसे जपते थे पहले लेकिन महाप्रभु ने सबको उसमें जपते कौन थे केवल ब्राह्मण जो उनके थे वो सब नहीं जपते थे लेकिन अब महाप्रभु ने सबको अधिकार दे दिया बोला वैदिक मंत्र है और नहीं दिए तो सब जप सकते हैं इसको कभी हम ऐसे कहते हैं कि आपको लेसन लेना है बंदूक का आपको मेरे को रेवलर का लेसन चाहिए तो मेरे को गवर्नमेंट से लेसन लेना पड़ेगा तब मैं रखूंगा ऐसे वैदिक मंत्र जपना है तो गुरु से जाके दक्षा लेके आना पड़ेगा तब लेकिन आर्मी के पास बंदूक की लेसन की जरूरत नहीं है तो हम तो संकीर्तन आर्मी है चेतन महाप्रभु हमको उसने अपने लेसन के साथ ये मंत्र दे दिया है ये महाप्रभु इसलिए पंचतत्व मंत्र पढ़ते हैं और फिर ये जपते हैं कि ये तो हमको आर्मी के रूप में असला मिला हुआ है ये हमारा महामंत्र इस तरीके से बगैर लेसन वाला है लेकिन महाप्रभु की अथॉरिटी के ऊपर है कोई अंतर नहीं क्यों एक राम भक्त होगा जय श्री हनुमान जय श्री राम बोलेगा हाँ उद्धव जय श्री कृष्ण बोलेगा दोनों को बोलने में कोई आपत्ति नहीं अर्जुन जय श्री कृष्ण बोलेगा हाँ और अगर अगर सुग्रीव बोलेगा तो जय श्री राम बोलेगा जरूर अच्छा है। मुरारी गुप्ता जय श्री राम बोलता था, चैतन्य महाप्रभु ने कहा बहुत अच्छा तुम हनुमान हो। रूप गोस्वामी का भाई अनुपम गोस्वामी जय श्री राम बोलता था, लेकिन उसको बोला ठीक है तुम राम भक्त हो राम भक्त रहो, लेकिन यहाँ तो किसी के भक्त नहीं है, जहाँ से दो पैसे का फायदा है उसके भक्त है। राम भक्त हो राम की भक्ति करे तो महाप्रभु ने कहा ठीक है आप करो, लेकिन ये तो कह आज इस मंदिर में गए यहाँ से फायदा नहीं हो इसको छोड़ो उसमें जाते हैं, ये तो किसी के भक्त नहीं है दो पैसे के फायदे, इसलिए इनका दुनिया की बात छोड़ो हनुमान राम जय श्री राम बोले उसमें कोई आपत्ति नहीं।
इन लोग की मायावती का अंतर्भुक्त होगा इन लोग जैसा फायदा लेता है, देखो इन लोग के मायावती बनेगा हम लोग
किसको
जैसा फायदा लेता है।
ये मायावाद का दूसरा अर्थ है, मायावाद का अर्थ है भगवान के शरीर को माया का मानना, भगवान का श्री विग्रह माया है इसको हो गया मायावाद। ये जो है ये कर्मकांडी है, इनको कर्मकांडी बोलेंगे भाई, अपने फायदे के लिए कभी किसकी पूजा करते हैं कभी किसकी पूजा करते हैं, ये कर्मकांडी लोग हैं, इसको कर्मकांडी लोग बोलते हैं।
यहाँ तक की सवाल है प्रपंच जो है आपने कहा कि तेज की सवाल है और सोने की सवाल है, दोनों चीजों की बात है
और दो और भी है, आहार निद्रा भय मैथुन्य दो और भी है,
वो आपने एलिमिनेट किए, मैंने दो कहा कि जो अगर हमारा खाने का सवाल सॉल्व हो गया और नींद का जगह सॉल्व हो गया है तो हमारा प्रपंच जो हो गया, ये दोनों ही प्रपंच हो, इसके अलावा आप जो और बाकी दो कहा इसके छोड़ के और क्या प्रपंच है और किसको प्रपंच में ले सकते।
इस दुनिया में ये चार ही चीजों के लिए सब लोग पागल की तरह घूम रहे हैं, इसे ज्यादा पता ही नहीं लोगों को, यही सबसे बड़ी प्रपंच है, रहेंगे कहाँ खाएंगे कहाँ भोग कैसे करेंगे और हमारा कोई भोग छीन न ले उसके लिए सुरक्षा कैसे करें, ये चार ही काम कर रहे हैं दुनिया सिर्फ ये चार ही काम कर रही है और ये पशु भी कर रहे हैं, फिर हमारे उसमें बड़ी बात क्या है, आहार निद्रा भय मैथुन पशु भी समान है धर्म आदि को विशेष, लेकिन मानव धर्म के ऊपर चल सकता है। एक आदमी बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, हमने जू के अंदर जाके पूछा, जू समझते हैं चिड़ियाघर, कि तुम इसमें देखते हो, बोला देखो, बोला कभी मुस्कुराते हुए देखा है किसी को, बोला कल बताऊंगा, बोला दूसरे दिन बोला मैं चिंगारते हुए देखता है धारते हुए देखा है रोते हुए देखा है मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा है किसी पशु को, तो मुस्कुराने का अधिकार तो केवल मानव को है, हम मुस्कुरा सकते हैं और जो नहीं मुस्कुराता है वो पशु हो जाता है। छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है, 400 टाइम 400 बार देखा है कि बच्चा अपने आप ही हंसता रह गया, और जैसे हम बड़े होते हैं हमारा हंसना समाप्त हो जाता है। एक आदमी बचपन से अंधा था तो 40 साल की उम्र में उसकी आंख की ऑपरेशन की, जब उसने आंख पर पट्टी खोली तो लोगों के चेहरे ऐसे मुरझाए वो देखे, पुरुष इससे तो अच्छा था मैं अंधा था, मैं समझता सब खुश होंगे लेकिन इनको देख के तो मेरे को दुख हो रहा था, इससे तो अंधा ही अच्छा था। इन आंखों से तो लोगों को दुखी देख रहा हूं, तो हमने मुस्कुराना ही बंद कर दिया जीवन में, मुस्कुरा भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, कभी भी चिंता में नजर नहीं आएंगे, तो हमें मुस्कुराते रहना चाहिए हंसते रहना चाहिए, सुसुखम भक्ति सुसुख के साथ करनी चाहिए, दुख के साथ नहीं करनी चाहिए, बाहर समझ के नहीं करना चाहिए, आनंद करके आनंद में करनी चाहिए। सब प्रपंच यही चार है दुनिया की सबसे बड़ी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दूसरी प्रपंच है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा बीमारी मृत्यु ये दूसरी प्रपंच है।
जरा मृत्यु जरा व्याधि जो आपने कहा ये तो आपका प्रपंच से इसका जॉय करने का तो कोई रास्ता नहीं है,
इसका रास्ता है
मृत्यु जरा व्याधि खाली तो परिणाम करके अगर गोलोक धाम जा सकते हैं तो खत्म, इसके अलावा तो ये चक्र में तो फंसा ही रहने पड़ा
है। हाँ तो ये भी प्रपंच है, ये भी प्रसाद खाने से और जुगल मूर्ति का दर्शन करते जाएगी, ये भी जाएगी, ये बड़ी प्रपंच है दूसरी जिसका कोई साधन नहीं है, चार वो प्रपंच चार ये प्रपंच आठ हो गई, और तीसरी पांचवी प्रपंच नवी प्रपंच मोबाइल है। तो हर वक्त परेशान करता रहता है, आने बाने नहीं काम हो तो भी रोना शुरू करेगा, पहले बच्चे रोते थे उनको चुप कराने में हमारे को थोड़ा टाइम लग रहा है, सारा दिन ही बच्चा रोता है। اس کو تو گود میں اٹھا نہیں سکتی ماں ساری عمر, یہ تو جیب میں پڑا ہی رہتا ہے رونے کے لیے. بڑا خطرناک بچہ ہے یہ. شرف اوپا رکھی ایکادشی مادھو تھی کی دیارا بھکت برند کی گور پریمانند ہرے کرشن ہرے کرشن 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 ہرے 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 رام رام رام.
تھینک یو ویری مچ, دھنیہ واد.